नमस्कार भारत, आज है 18 अगस्त दिन शुक्रवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। बार्सिलोना में चरमपंथी हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल।
It's a beautiful sunny day. Las Ramblas is right in the heart of the city. It's jam-packed with thousands of tourists. Heard a crashing noise and the whole street.
क्या इस हमले को रोका जा सकता था? करेंगे चर्चा। भारत और चीन के बीच तनातनी जारी, क्या है ताजा घटनाक्रम के मायने?
आप इमेजिन कीजिए कि चीन के सैनिक और भारत के सैनिक एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं और एक दूसरे को हॉकियों और उससे पिटाई कर रहे हैं। जो टेंशन है वो अभी भी बरकरार है, कोई सॉल्यूशन इमीडिएटली नजर नहीं आ रहा है भारत और चीन के बीच में।
बिहार में कई जगह बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन आफत अभी खत्म नहीं हुई। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। स्पेन की पुलिस बार्सिलोना में वैन से हमला करने वाले संदिग्ध की तलाश में जुटी है। इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियाना रखॉय ने इस हमले को जिहादी हमला बताया है। पुलिस का कहना है कि बुधवार को एक मकान में एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें पुलिस के मुताबिक विस्फोटक बनाए जा रहे थे। बार्सिलोना के वैन हमले को इसी धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच कैटलन पुलिस ने कहा है कि बार्सिलोना के दक्षिण में कैम्ब्रल्स शहर में चरमपंथी हमले को रोकने के दौरान कई लोगों को मार गिराया गया है। स्पेन में मीडिया के अनुसार शहर में गोलीबारी हुई है और 4 लोगों को मार गिराया गया है। पुलिस ने शहर के लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। कैम्ब्रल्स शहर में रिपोर्टों के मुताबिक 4 लोगों को पुलिस ने मार गिराया है और ये 4 चरमपंथी बताए जा रहे हैं। इस बीच बार्सिलोना में वैन के हमले में हताहत हुए लोगों के 18 अलग अलग देशों से होने की जानकारी सामने आ रही है। जर्मनी में मीडिया के मुताबिक मारे गए लोगों में 3 जर्मनी के हैं, वहीं बेल्जियम के एक व्यक्ति की मौत की ब्रसेल्स ने पुष्टि कर दी है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने इस घटना को घिनौनी घटना बताया है और अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमरीका मदद के लिए हमेशा तैयार है। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी विदेश मंत्री टिलरसन ने ये कहा,
We will continue to monitor the situation. We stand ready to assist law enforcement, national security authorities in Spain.
हम स्थिति पर नजर रखेंगे। हम कानून और व्यवस्था अधिकारियों और स्पेन की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की मदद करेंगे। बार्सिलोना और स्पेन में हमारी कॉन्सुलेट वहां मौजूद अमरीकियों की मदद कर रहे हैं। दुनिया भर में चरमपंथियों को ये पता होना चाहिए कि अमरीका और उसके सहयोगियों ने ढूंढ कर न्याय करेंगे। ये थे रेक्स टिलरसन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में नस्लभेद को लेकर बहस गहराती जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐतिहासिक मूर्तियों को हटाकर अमेरिका के इतिहास को छेड़ा जा रहा है। इन मूर्तियों में गुलामी का समर्थन करने वालों के बुद्ध भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान वर्जीनिया में शार्लट्सविल में एक रैली में हिंसा के एक व्यक्ति की मौत के बाद आया है। ये रैली अमरीका में सेना के जनरल की मूर्ति हटाने के विरोध में निकाली गई थी। हिंसा के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा वाले और उनके विरोधियों को भी जिम्मेदार ठहराया था। ट्रंप के इस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया ने कड़वाहट बढ़ाने की कोशिश की तो उसके गंभीर सैन्य नतीजे होंगे। जापान के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इसका जवाब काफी गंभीर होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव को देखते हुए जापान और अमरीका साझा सैन्य अभ्यास करेंगे।
Together, we will deter and, if necessary, defeat any threat.
हमने फैसला किया है कि जरूरत पड़ने पर हर खतरे का जवाब देंगे। अगर कोई कड़वाहट और संघर्ष की शुरुआत की गई तो जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। दोनों देश मिलकर माकूल जवाब देंगे। हम द्विपक्षीय गतिविधियों और सहयोग बढ़ाकर जवाब देंगे, जिसके अलावा कोरियाई गणतंत्र के साथ सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। ये थे जेम्स मैटिस के शब्द। अफ्रीकी देश सियरा लियोन में बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए 300 लोगों को सामूहिक रूप से सुपुर्द खाक किया गया। फ्री टाउन के पास भूस्खलन में सोमवार को 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 600 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। विश्व मानचित्र पर भूमध्य सागर के किनारे एक खूबसूरत शहर बसा है जिसे दुनिया बार्सिलोना के नाम से जानती है। गुरुवार को उसी बार्सिलोना के एक हिस्से में शाम होने से पहले एक सड़क पर अचानक सफ़ेद रंग की वैन आती है जो सड़क के साथ साथ फुटपाथ पर चल रहे लोगों को भी कुचल देती है। थोड़ी ही देर में ये साफ हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि चरमपंथी हमला है जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए हैं अभी तक और 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
बार्सिलोना में भीड़ पर वैन दौड़ाने की ये घटना यूरोप में गाड़ियों से किए गए हमलों की एक और कड़ी है। बार्सिलोना की ला राम्बला सड़क पर वही भयंकर दृश्य फिर से देखने को मिला जो पिछले एक साल में यूरोप के कई शहरों में देखने को मिल चुका है। ये सिलसिला फ्रांस के नीस में बास्टिल डे परेड में भीड़ पर लॉरी दौड़ाने से शुरू हुआ था और फिर बर्लिन, स्टॉकहोम और लंदन जैसे शहर इस तरह की दहशत के गवाह बन चुके हैं। दोपहर का समय था। बार्सिलोना में पर्यटकों के बीच मशहूर ला राम्बला सड़क पर एक वैन जब भीड़ के बीच दौड़ आई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पर्यटकों के बीच मशहूर ला राम्बला सड़क पर खरीदारी करने के लिए हजारों पर्यटक मौजूद थे। इसी सड़क के फुटपाथ पर जब वैन दौड़ गई तो लोग आनन फानन में मार्केट में मौजूद दुकानों और गिरजाघरों में शरण लेने के लिए दौड़ पड़े। एक चश्मदीद लियम बताते हैं, मैं वैन के बहुत करीब था, शायद वैन से 10 फीट की दूरी पर था। मैं बाकी लोगों के साथ एक घर में घुस गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उस वक्त एक जोरदार आवाज सुनी थी और सब भागने लगे थे। कई लोग इसमें घायल हो गए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें कितने लोगों की मौत हुई है। ये थे एक चश्मदीद लियम के शब्द। वहीं एक और चश्मदीद आमिर अनवर बताते हैं, इस घटना के बाद पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात हो गए।
It's a beautiful sunny day. Las Ramblas is right in the heart of the city. It's jam-packed with thousands of tourists.
सब दौड़ने लगे तो मैं भी उसी दिशा में दौड़ने लगा। लोग चिल्ला रहे थे और कुछ ही पलों में पुलिस अधिकारी सड़कों पर आ गए थे। कुछ ही पलों के अंदर पुलिसकर्मी बंदूकें लेकर तैनात हो गए। एम्बुलेंस भी आ गई और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी पहुंच गई। ये थे आमिर अनवर के शब्द। फिलहाल पुलिस बार्सिलोना में गाड़ी से हमला करने वाले संदिग्ध की तलाश में जुटी है। पुलिस ने एक स्केच जारी किया है जो उस व्यक्ति का बताया जा रहा है जिससे ये वैन किराए पर ली गई थी। इसकी पहचान मोरक्को मूल के द्रिस ओकबीर के नाम पे की गई है। स्पेन की मीडिया के मुताबिक अन्य संदिग्ध को पुलिस ने बार्सिलोना शहर के बाहरी इलाके में मार गिराया है। वहीं कैटलन सरकार में विदेश मंत्री राल रोमेवो ने कहा, अभी जांच चल रही है और दो लोगों को पकड़ा गया है। इससे आगे मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। ये थे राउस रोमेवो के शब्द। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। आईएस ने दावा किया है कि उसके ही सैनिकों ने ये हमला किया है। बार्सिलोना में इस हमले की कड़ी आलोचना हो रही है। वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ट्वीट कर बार्सिलोना में हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री मारियाना राहोय बार्सिलोना पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने भी जांच में मदद की पेशकश की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हम एक और प्रतिबद्ध रहेंगे।
बार्सिलोना में हुए हमले को जानकार ऐसा हमला मान रहे हैं जिसे रोकना आसान नहीं था। बीबीसी के सुरक्षा मामलों के संवाददाता गॉर्डन कोरेरा का विश्लेषण सुनिए एक बार फिर हरिता कांडपाल की जुबानी।
बार्सिलोना यूरोप के उन शहरों में शुमार हो चुका है जहां भीड़ पर कोई वाहन चढ़ाने की घटना पहले हो चुकी है। पिछले साल फ्रांस के नीस में बास्टिल डे परेड में आतिशबाजी देखने पहुंचे लोगों को निशाना बनाया गया था और पेरिस के अलावा ब्रिटेन में लंदन और फिर स्टॉकहोम में भी इस तरह के हमले हो चुके हैं। जर्मनी के बर्लिन में पिछले साल दिसंबर में मशहूर क्रिसमस मार्केट पर एक लॉरी दौड़ा दी गई थी और हाल ही में ब्रिटेन में फिंसबरी में मुस्लिमों को निशाना बनाया गया था। مانا جا رہا ہے کہ عام لوگوں کی بھیڑ جیسے سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کا یہ سستا اور ایک طریقے سے کہیں تو آسان طریقہ ہے۔ برٹن میں اس طرح کے حملے کے بعد سرکشا کے انتظام کڑے کرنے کی یوجنا ہے، یہاں تک کہ کرائے پر وین دینے کے مانکوں پر بھی وچار ہو رہا ہے۔ لیکن یورپ میں سرکشا وشیشجھ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کے حملے کی یوجنا کی پہچان کرنا اور روکنے میں وہ ایک حد تک بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیار آسانی سے اپلبدھ ہیں، یوجنا اور پرشکشن کے استر پر بھی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے، اور ان ستھیوں کو دیکھیں تو خفیہ ادھیکاری کچھ ہی لوگوں کی پہچان کر سکتے ہیں، اور اسی لیے آنے والے دنوں میں اس طرح کے حملوں کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔
بارسیلونا میں چرم پنتھی حملہ، کم سے کم 13 لوگوں کی موت اور 100 سے زیادہ لوگ گھائل۔ بی بی سی کے سرکشا معاملوں کے سنواداتا گورڈن کوریرا کا وشلیشن سنا رہی تھیں ہریتا کانڈپال۔
75 ورشوں سے آپ کے ساتھ
بی بی سی ہندی ریڈیو،
سنیے اپنے موبائل پر
اور آن لائن بھی۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ڈوکلام وواد کی وجہ سے بھارت اور چین کے بیچ لگ بھگ 2 مہینے سے تناؤ، تناتنی اور بیان بازی جاری ہے۔ اس بیچ لیہ میں دونوں دیشوں کے سینکوں کے بیچ پتھر بازی اور ٹکراؤ کی خبریں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اس پورے گھٹنا کرم کو آخر کس طرح سمجھا جائے، یہی جاننے کے لیے بی بی سی سنواداتا ونیت کھرے نے ورشٹھ پترکار سشانت سنگھ سے بات کی۔
دیکھیے، 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ڈوکلام میں ڈولم پلیٹو کے اندر جو سٹینڈ آف ہے وہ تقریباً 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ اور علاقے میں، جیسے خاص طور پہ پینگونگ سو لیک کے علاقے میں لداخ میں رویوار کی صبح جو ہوا جہاں پر کہ پتھر بازی بھی ہوئی، اور جو کہ فوج نے بھی سویکارا ہے کہ بھائی پتھر بازی ہوئی لوگوں کے بھی سڑک میں۔ آپ امیجن کیجئے کہ چین کے سینک اور بھارت کے سینک ایک دوسرے پر پتھر پھینک رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہاکیوں اور اس سے پٹائی کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا بڑا ہی انیوژل سیناریو ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے بھارت اور چین کے بیچ میں ہمیشہ 1 اگست کو اور 15 اگست کو، 1 اگست جو کہ پی ایل اے کا فاؤنڈنگ ڈے ہے اور 15 اگست جو کہ بھارت کا سوتنترا دیوس ہے، 2005 کے بعد سے وہاں پر ایک طرح کی سیریمونیل میٹنگس ہوتی ہیں پانچ جگہ پر بارڈر پوسٹ پہ۔ وہ سیریمونیل میٹنگس اس بار نہیں ہوئی ہیں، تو یہی درشاتا ہے کہ جو ٹینشن ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اور کوئی سولوشن امیڈیٹلی نظر نہیں آ رہا ہے بھارت اور چین کے بیچ میں۔
چین کے اندر بھیتر کتنا دباؤ ہے کہ وہ کچھ کرتے ہوئے دکھے؟
جب سے شی جن پنگ چین کے پریمیئر بنے ہیں تب سے چین کے اندر کافی زیادہ نیشنلزم کا بڑھاوا ہوا ہے، اور جس طرح کا الٹرا نیشنلزم چین میں آج کل ہے، پہلے وہ جاپان اور تائیوان کے مدعے پر یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ کنٹریز کے مدعے پہ تھا، ابھی شاید وہ بھارت کے مدعے پر بھی ہے۔ پچھلے 2 مہینے کے اندر جس طرح کی خبریں چینی اخباروں نے چھاپی، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ شاید جو چین میں شی جن پنگ کے وقت میں جس طرح سے الٹرا نیشنلزم کا جو آیا ہے اس کا دباؤ ہے، اور چین کے میڈیا میں جتنا زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ دباؤ بھارت کے اوپر پڑے گا اور چین کے اوپر پڑے گا کچھ کاروائی کرنے کی۔
بھوٹان کا رول کتنا مہتوپورن ہے اس پورے معاملے میں، اور کیا سوچ ہے سرکار کی؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ بھوٹان کا رول اس میں بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جہاں پر اسٹینڈ آف کی جو سائٹ ہے وہ جگہ بھوٹان کی جگہ ہے۔ بھارت سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ بھوٹان کی جگہ ہے، چین یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ بھوٹان نے 29 جون کو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا جس میں انہوں نے صاف طور پہ چین کو کہا تھا کہ بھائی آپ ہماری جگہ پر، ہماری سیماؤں کے اندر آ کر یہ سڑک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھوٹان اور بھارت کے جو سمبندھ ہیں وہ بہت ہی نزدیکی ہیں، بھوٹان کے چین کے ساتھ کوئی سمبندھ نہیں ہے، اور بھوٹان کے نقشے کے اندر بھی ڈوکلام جو علاقہ ہے وہ ڈوکلام علاقہ بھوٹان کے نقشوں کے اندر بھوٹان کا ہے، بھوٹان کے علاقے کے اندر ہے۔ جو یہ بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے شاید کچھ ورشوں پہلے یہ آفر دیا تھا بھوٹان کو کہ آپ ڈوکلام ہم کو دے دیں اور جو ہمارے دوسرے ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں ناردرن ایریاز میں وہ ہم آپ کو کنسیڈ کر دیں گے، پر وہ بات آگے نہیں بڑھی۔ تو اس بات کو جب آگے نہیں بڑھی تو ابھی بھی یہ کم سے کم یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو ہے ہی بھوٹان اور چائنا کے بیچ میں، اگر یہ بھوٹان کا علاقہ آپ نہ بھی بولے ہیں تو۔
لیکن چین کی طرف سے اس میسج کو بار بار اس کو پش کرنا کہ بھوٹان کی سوچ ہے اس کو بھارت پربھاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو امپریشن ہے اس میں کچھ بھی سچائی ہے یا؟
دیکھیے، تھوڑی بہت تو سچائی ہے کہ بھوٹان کے اندر خاص طور پہ جب سے ڈیموکریسی آئی ہے 2007 کے بعد سے، جب سے وہاں پر چناؤ ہوئے ہیں، کچھ ایسے ریپرزینٹیٹیوز ہیں بھوٹانی پارلیمنٹ کے اندر، بھوٹانی کاؤنسل کے اندر، ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہم کو دو दोनों देशों के साथ संबंध रखने चाहिए, चीन के साथ भी और भारत के साथ भी। पर जो भूटान के किंग हैं, भूटान के जो राजा हैं, वो भारत के समर्थक, और भूटान की जनता भी बहुत हद तक भारत की हितैषी और भारत की बात सुनती है। पर यह बात भी सच है कि भूटान के अंदर इस तरह की आवाजें उठ रही हैं जो कहती हैं कि भाई हमको सिर्फ भारत के साथ नहीं, बल्कि जिसको वो यूज करते हैं कि हमारी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसका कहने का मतलब है कि हमारे चीन के साथ भी संबंध होने चाहिए। वो इतना बड़ा देश है, वो जैसे बाकी देशों में इन्वेस्ट करता है, हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करेगा।
जो रिपोर्टें एटलीस्ट जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ लोगों ने पढ़ी हैं, कि जो डोकलाम से सटा हुआ भारतीय इलाका है, वहाँ बहुत ज्यादा चिंता या उस तरह का, जिसे आप एक्सपेक्ट करेंगे, पैनिक हो कि यार कुछ हो सकता है, इस तरह का अभी उस नहीं दिख रहा है, जबकि चीन की तरफ से इस तरह का एक इमेज पेश करने की कोशिश की जा रही है कुछ हो सकता है।
पहले तो है कि भारतीय सेना ने जो भी इलाके नजदीक हैं डोकलाम के पास, वहां पर उनका एक्सेस बिल्कुल रोक दिया है। अच्छा, तो किसी भी पत्रकार को जाने का वहां पर कोई इरादा नहीं है। जो थोड़े
हमें पता नहीं चल पा रहा है
लोग क्या सोच रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। जो थोड़े से पीछे के गाँव है वहां पर इस बात की चिंता तो जरूर है कि फौजें मूव कर रही है और लोग जिस तरह की बातें सुन रहे हैं कर रहे हैं, पर यह सोचना कि साहब कल लड़ाई छिड़ जाएगी या युद्ध कल छिड़ जाएगा या परसों छिड़ जाएगा, इस तरह की बात अभी तक तो सुनने में नहीं आई है।
भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर ताजा स्थिति के मद्देनजर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह। कार्यक्रम में आगे आज के अखबारों की सुर्खियां, लेकिन आज दिल्ली से नहीं बल्कि लखनऊ से चलेंगे अपने सहयोगी समीरात्मज मिश्र के पास। लेकिन पहले बात बिहार की, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उन 90 लोगों में से भी सबसे अधिक लगभग 30 लोग अररिया ज़िले में मारे गए हैं, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी नीरज सहाय। आइए सुनते हैं उनकी ये ज़मीनी रिपोर्ट।
भीषण बाढ़ की चपेट में आए अररिया में लाखों लोगों के सामने बाढ़ के पाँचवें दिन भी कई चुनौतियाँ हैं। संचार व्यवस्था ध्वस्त है और आवागमन अब भी ठप है। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया करवा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे जरूरत से काफ़ी कम बता रहे हैं। लोगों को बोट से लाने के दौरान भी अफरा तफरी का आलम साफ दिख जाता है। राज्य आपदा राहत बल के वरीय अधिकारी बताते हैं कि अगर वे सख्ती न बरतें तो बोट की क्षमता से अधिक लोग सवार हो जाएंगे।
ओवरलोड पहले ही हो गया, तुम लोगों को नहीं लाना होता तो क्यों आते इधर? और एक चीज बता दें, लाइन लगा लो अगर जाना है तो, एक एक करके 10 आदमी बैठो, सबको पार करा देंगे।
बाढ़ पीड़ितों के लिए अररिया शहर में 3 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। उनकी शिकायत है कि ये शिविर उनके ठिकानों से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ नहीं जाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि वह इन शिविरों के माध्यम से खाना पैक करवाकर पीड़ितों को पहुंचवाने का प्रयास कर रहा है। अररिया कॉलेज के राहत शिविर में खाते मिले बाढ़ पीड़ितों के अनुसार,
यहाँ कोनो मिलती है कि सरकारी आदमी
पर जो है कि
नहीं, 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 मतलब दोनों समय खाना मिल जा रहा है।
हाँ,
क्या क्या मिलता है खाना में?
खाना पर सब्जी भात दाल यही खाना मिलता है।
प्रशासन के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी सेविकाएं सामुदायिक किचन में बने खिचड़ी भी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा रही हैं। प्रतिदिन सामुदायिक किचन में करीब 100 लोग खाना खा रहे हैं। बिहार में इस साल आई बाढ़ से अब तक 92 लोगों की जान चली गई है, जबकि इस जिले में सबसे ज्यादा 29 लोगों की मौत हो चुकी है। नीरज सहाय, BBC अररिया।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा, नमस्कार। भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, न केवल bbchindi.com पर, अपने रेडियो पर और फेसबुक पर भी इस समय आप हमें लाइव सुन रहे हैं। जिन श्रोताओं ने हमें अभी अभी ट्यून किया है, अभी अभी सुनना शुरू किया है, हम उन्हें एक बार फिर बताना चाहेंगे। बार्सिलोना में चरमपंथी हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 100 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो इस हमले में घायल हुए हैं। और इस हमले के बाद, कई घंटे के बाद, स्पेन की पुलिस का दावा है कि उसने एक दूसरे हमले को रोका है, सफलतापूर्वक रोका है, और उस हमले को रोकने के बाद की कार्रवाई अभी जारी है। ये तमाम खबरें पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां इस घटना से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और विश्लेषण बहुत कुछ मौजूद है। और आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में बीते दिनों कई बच्चों की मौत के बाद राजनीति गर्माई हुई है और इसकी जाँच की आँच और कब किस पर गिरेगी गाज, इस तरह की तमाम बातें और उसके पीछे आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र को। समीर, दिल्ली का मौसम उमस भरा, कैसी सुबह है लखनऊ की, और फिर बताएं अखबार, लखनऊ से छपने वाले अखबार आज क्या क्या बयां कर रहे हैं?
जी संदीप, जहां तक आपने मौसम की बात की तो मौसम में मुझे लगता है कि दिल्ली और लखनऊ फर्क नहीं है, क्योंकि उमस सुबह सुबह यहाँ भी है। और अगर अखबारों की चर्चा करें तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कल सारे दिन बहुत चर्चित खबर ये रही कि मेडिकल कॉलेज में जो प्राइमरली जो डीएम की रिपोर्ट में ये कहा गया कि कुछ लोगों पे सवाल उठाए गए जो वहाँ के निलंबित प्राचार्य हैं, और उसके अलावा एक जो बाल रोग विभाग के जो एनेस्थीसिया विभाग के जो एचओडी थे डॉक्टर सतीश, और कुछ लोगों पे सवाल उठाए गए थे, उनकी चर्चा अखबारों में है जरूर, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं है। अगर हम दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण लिखता है पूर्व चिकित्सा अधीक्षक से पूछताछ, दस्तावेज खंगाले गए, निलंबित प्राचार्य और उनकी पत्नी से देर रात तक चलता रहा पूछताछ का सिलसिला, डीजी हेल्थ और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीके सिंह कर रहे हैं पूछताछ की अगुवाई। और इस तरह से दूसरे अखबारों ने भी, अमर उजाला लिखता है आईएमए ने डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर कफील खान को दोषी ठहराया है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बैठाई थी और आज यानी 18 तारीख को कुछ और लोगों को बुला करके पूछताछ की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि पहले भी ऑक्सीजन की कमी की कई शिकायतें आई थी लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया, और इस तरह से उसने इस खबर के बारे में और जानकारियां दी हैं। वहीं दैनिक जागरण ने एक और बॉक्स में खबर प्रकाशित की है कि 24 घंटे में 8 और मरीजों की मौत, अब तक एंसेफलाइटिस से गोरखपुर में कुल 145 लोगों की मौत हो चुकी है। और लगभग सभी अखबारों ने इसको कवर जरूर किया है लेकिन उतनी प्राथमिकता से नहीं, चूंकि प्राथमिकता से मुझे लगता है कि उनके पास कवर करने के लिए और भी खबरें थी, खासतौर से जो कर्ज माफी की शुरुआत की गई कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की साथ लोगों को प्रमाण पत्र बांट करके कर्ज माफी देने की शुरुआत की गई, तो वो खबर भी अखबारों में है। और अमर उजाला की जो एक कह लीजिए कि लीड खबर है, सबसे प्रमुख खबर है, वो है ट्रॉमा में आग मामले में 6 निलंबित। ये पिछले दिनों अगर आपको याद होगा कि यहाँ जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वहाँ ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई थी, और बहुत सेंसिटिव जगह है वो और बहुत सुरक्षित भी मानी जाती है, वहाँ आग लगने के मामले में 6 लोगों को निलंबित किया गया है, कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है, कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। उसके अलावा एक और खबर प्रमुखता से यहाँ के अखबारों में है, बब्बर खालसा का एक और आतंकी गिरफ्तारी, अमर उजाला लिखता है एटीएस ने जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने 24 घंटे में 2 बब्बर खालसा के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल की जो गिरफ्तारी है वो उन्नाव से की गई है, कानपुर के पास उन्नाव से। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग जागरण की और तो शिक्षा मित्रों की यहाँ पे जो आज से और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, कल मुख्यमंत्री से भी उनकी बातचीत हुई लेकिन कुछ उससे निकला नहीं, उस खबर को भी अखबार ने प्रमुखता से दी है। और दूसरे जो हम बात करना चाहेंगे बाढ़ की खबरों को, क्योंकि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई इलाका इधर बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, और नेपाल की ओर पानी छोड़े जाने के कारण ये बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है, उस खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। संदीप
जी बहुत शुक्रिया। समीर आत्मज मिश्र लखनऊ से हमारे सहयोगी बता रहे थे लखनऊ से छपने वाले अखबार आज क्या सुर्खियां लगाई हैं, उन्होंने क्या खबरें बयां कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अब भारत पाकिस्तान के विभाजन के 70 साल पूरे होने के मौके पर बीबीसी की खास पेशकश की अगली कड़ी। क्या आप जानते हैं कि विभाजन के 70 साल बाद भी भारत में एक गांव ऐसा है जहां रहने वाले लोगों का दिल आज भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के लिए धड़कता है। सुनिए सुहेल हलीम की ये रिपोर्ट।
बेगन बेनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया।
विभाजन के 70 साल बाद भी भारतीय पंजाब के एक छोटे से गांव का दिल शरीफ खानदान के लिए धड़कता है। अमृतसर के पास स्थित जाती उमरा शरीफ खानदान का पुश्तैनी गांव है जिसका गुरुद्वारा उनके पुराने घर की जमीन पर ही बना हुआ है।
सात नाम वाहे गुरु, सात नाम वाहे गुरु।
मैं गांव के सरपंच दिलबाग सिंह के घर पहुंचा तो एक दीवार पर शाहबाज शरीफ की तस्वीर टंगी हुई थी। دلباغ سنگھ کہتے ہیں کہ ان کے پتا اور نواز شریف کے پتا میاں محمد شریف دوست تھے۔
پہلی بار چون جیتے، پردھان منتری بنے، ہم نے سارے نگر نے مل کر بہت زیادہ خوشی منائی۔ جدی مطلب کوئی بھی انہوں نے مطلب پیچھے جے کو کشٹ آیا اس کو دیس نکالا دیا گیا، تاں بھی گاؤں والے نے سبھی نے مل کر گرو گھر جہاں ان کا گھر تھا وہاں پر پرارتھنا کی، بھگوان نے منظور کر لیا، اس کے وہ پاکستان پھر واپس آ گئے۔
گردوارے کے گرنتھی اندرجیت سنگھ نے مجھے بتایا کہ کافی وقت پہلے شریف خاندان نے خود گردوارے کو اپنی زمین دے دی تھی۔
1982 میں جب ایشین کھیڈاں ہوئی تھی تو اس وقت وہ پروار سمیت ان کے میاں نواز شریف کے بزرگ اور وہ آپ سارا فیملی جہاں نگر کو سارے کو ملنے واسطے آئے، اور جب اپنے نے اپنا گھر دیکھا تو اس کی حالت جو خستہ ہو چکی سی، جہاں گردوارا صاحب ویسے ہی نزدیک تھا تو سارے نگر کے نال انہوں نے صلاح کی کہ گردوارا صاحب کے نال ہی یہ جوڑ دیتا جائے۔
پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف کے پتا وبھاجن سے پہلے ہی یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے گاؤں سے ناتا نہیں توڑا، اور اب یہاں کے لوگ اپنے ان پڑوسیوں سے ملنے جاتے رہتے ہیں جو اب بہت مشہور ہو گئے ہیں۔ 2013 میں شہباز شریف یہاں آئے تو راجیہ سرکار نے گاؤں کا حلیہ ہی بدل دیا۔ دلباغ سنگھ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ یہاں سر جھکانے کا دل کرتا ہے۔
جب وہ سٹے تے بول رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں تو یہ بھگوان کا شکر کرتا ہوں گا کہ اسی کی سی گئے تھے، جو پنڈ والوں نے بتایا ساڈے باپ کیا کام اتنے کرتے تھے، اس کا دادا جی رمضان شریف حکیمی کرتے تھے، چھوٹا تھوڑا وپار کرتے تھے، پر آج اسی کی بن گئے۔ وہ بولتے تھے ہم تو مڑ مڑ اس زمین کو مٹی کو نت مستک ہونے کو من کرتا ہے کہ اسی کیا تھے دے اور کیا بھگوان نے بنا دیا ہم۔
میں نے گرنتھی اندرجیت سنگھ سے پوچھا کہ جب پاکستان سے آ کر چرم پنتھی انڈیا میں کوئی حملہ کرتے ہیں تو انہیں کیسا لگتا ہے، تو وہ بولے
وہ کوئی بھی جو وہاں پردھان منتری بنتا ہے نا پاکستان میں، اس کے بس میں تھوڑی بات رہ جاتی ہے، اس کے جو ادھر کے جو آتنکواد ہے نا جنہوں نے پھیلایا ہوا ان کے ہاتھ میں زیادہ ہے۔
دلباغ سنگھ نے مجھے گاؤں کے باہر ایک کنواں بھی دکھایا جس میں ان کے مطابق ایک بار شریف خاندان کا ایک اونٹ گر گیا تھا جو اس وقت کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بارڈر پر لوگ مرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ جتنا پیار وہ جاتی عمرہ سے کرتے ہیں اتنا ہی دونوں ملکوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔
یہ تو جو اس ٹائم کی بات 70 سال پہلے کی بات ہے جو ہو گیا، پر جو آج ہو رہا ہے نا، آئے دینا ادھر ادھر گولی چلتی ہیں، نردوش لوگ فوجی جوان اس کے بھی مرتے ہیں، ہمارے بھی مرتے ہیں بارڈر پر، وہ بہت دکھ ہوتا مان کو۔ یہی سوچتے ہیں ہمیشہ کہ جس طرح اس کا پیار جاتی عمرہ کے ساتھ ہے ایسے ہی دونوں ملکوں کا پیار ہونا چاہیے۔
جاتی عمرہ ایک معمولی سا گاؤں ہے جو وبھاجن کے 70 سال بعد بھی اپنے ایک خاندان کے غیر معمولی سفر پر ناز کرتا ہے۔ سہیل حلیم، جاتی عمرہ، پنجاب۔
اور اس خاص رپورٹ کے ساتھ ہی وقت ہو چلا ہے کاریکرم کے سماپن کا، لیکن چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر سنیں گے۔
بی بی سی سماچار۔ اسپین کی پولیس بارسلونا میں وین سے حملہ کرنے والے سندگدھ کی تلاش میں جٹی ہے۔ کم سے کم 13 لوگوں کی اس حملے میں موت ہو گئی تھی اور 100 سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تھے۔ اسپین کے پردھان منتری نے اسے جہادی حملہ بتایا ہے۔ کیٹلن پولیس کے مطابق بارسلونا کے دکشن میں کیمبرس شہر میں بھی چرمپنتی حملے کو روکنے کے دوران کئی لوگوں کو مار گرایا گیا ہے۔ اسپین میں میڈیا کے انوسار شہر میں گولی باری ہوئی ہے اور 4 لوگوں کو مار گرایا گیا ہے۔ پولیس نے شہر کے لوگوں سے باہر نہیں نکلنے کی صلاح دی ہے، اور کیمبرس شہر میں رپورٹوں کے مطابق یہ 4 لوگ چرمپنتی بتائے جا رہے ہیں۔ اسپین میں میڈیا کے انوسار بارسلونا کے دکشن میں کیمبرالز شہر میں وین حملہ وروں نے کئی لوگوں کو گھائل کر دیا ہے، اس میں ایک پولیس ادھیکاری بھی شامل ہے۔ اس بیچ بارسلونا میں وین کے حملے میں ہتاہت ہوئے لوگوں کے بارے میں جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ یہ لوگ 18 الگ الگ دیشوں کے ہیں۔ جرمنی میں میڈیا کے مطابق مارے گئے لوگوں میں 3 جرمنی کے ہیں، وہیں بیلجیم کے بھی ایک ویکتی کی موت کی پشٹی برسلز میں کی گئی ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے اس حملے کو گھناؤنا حملہ بتایا ہے، اور امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ अमरीका के रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया ने कड़वाहट बढ़ाने की कोशिश की तो इसके गंभीर सैन्य नतीजे होंगे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुने आपने, हरिता कांडपाल से। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और फेसबुक के जरिए हमें आपसे जोड़ रही थी सिंधु वासिनी त्रिपाठी। नमस्कार भारत में आज इतना ही। संदीप सोनी को पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।